एक पवित्र परछाई। कहते हैं वहां एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जो कि बहुत ही परोपकारी, बहुत ही नेक, बहुत ही साफ दिल, ऐसा जो व्यक्ति था। तो एक दिन स्वर्ग से फरिश्ते आ गए उसके पास और उससे कहने लगे कि भगवान ने हमें भेजा है, हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ दे। तो वो व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है, नहीं, हम तुम्हें कुछ देकर ही रहेंगे। वो फरिश्ते कहते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। वो कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें कोई ना कोई वरदान देंगे, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वो कहता है, मुझे वरदान भी नहीं चाहिए। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें एक वरदान देंगे, ऐसा वरदान देंगे कि जो भटक रहे हैं और जैसे ही तुम्हारे संपर्क में आ जाए उन्हें राह मिल जाए। वो कहता है कि ये काम तो फरिश्तों का है, मेरा काम नहीं है, उन्हें ही राह दिखाने दो। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई बीमार है और तुम उसे स्पर्श कर दो तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं, उसकी अगर ऐसा अगर हुआ तो लोग तो मुझे ही भगवान मानने लगेंगे, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर वो उसे कहते हैं, यदि तुम किसी सूखे वृक्ष के पास चले जाओ तो वहां हरियाली हो जाएगी, उस बगीचे में हरियाली हो जाएगी। तो वो कहते हैं, इस तरह तो लोग मुझे मसीहा मानेंगे, पैगंबर मानेंगे, ये भी नहीं चाहिए। सब फरिश्ते वापस लौटते हैं और भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करे, इसको क्या दे। तो भगवान उसके कानों में, उनके कानों में एक बात कहते हैं और उन्हें वापस भेजते हैं जोगी। परंतु वो फिर भी एक शर्त रखता है, वरदान ऐसा देते हैं उसे कि तुम जहां से जाओगे वहां हरियाली हो जाएगी और तुम्हारी परछाई जिन जिन आत्माओं पर पड़ेगी उनके जीवन में खुशी आ जाएगी, जिस बीमार पर तुम्हारी परछाई पड़ेगी वो ठीक हो जाएगा। परंतु वो एक शर्त रखता है, वो कहता है कि जिन जिन आत्माओं का मैं कल्याण करूंगा उनको ये पता ना चले कि ये मैंने किया है, और मुझे भी ये ना पता चले कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो आज तक उस व्यक्ति का नाम किसी को ही नहीं पता, उसे कहा जाता है द होली शैडो, अर्थात ऐसी परछाई, इस तरह की उसने सेवाएं की कि जिनकी सेवा कर रहा है या की उन्हें भी नहीं पता कि इसने की। वो कहता है कि ये अहम भाव भी मुझ में आ जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं निमित्त बना हूं इनकी सेवा के, वो कहता है इस आम से भी मुझे मुक्त होना है, तो मुझे भी ना पता चले कि किसका कल्याण मेरे द्वारा हुआ है और उन्हें भी ये पता ना चले कि उनका कल्याण मेरे द्वारा हुआ है। यदि हम सभी भी ऐसी सेवा करें तो जहां जाए वहां आत्माओं का कल्याण हो जाए, जिसके पास से गुजरे उसे राहत मिल जाए। आज बाबा ने एक जगह कहा है, बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहराएगा विश्व में, सबसे पहले इधर लहराना चाहिए, किधर, दिल में। जब यहां उसकी याद है तब बाहर भी उसकी प्रत्यक्षता का वो झंडा लहराएगा। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जब से इस यज्ञ में आए और जब से यहां जन्म लिया, इस अलौकिक जन्म को पाते ही हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हुआ या नहीं हुआ, याद करो वो दिन जब हम भगवान को नहीं जानते थे, क्या कर रहे थे सुबह से लेकर तो रात तक, कौन सी बातें करते थे, कौन सी चर्चाएं करते थे, किस तरफ बुद्धि जाती थी, क्या क्या मन में संकल्प विकल्प स्वप्न आते थे। और अब जबकि स्वयं भगवान के हम बने हैं और स्वयं भगवान के घर के सदस्य है और स्वयं भगवान की इस पाठशाला के विद्यार्थी है, तो हमारे जीवन में कैसा आमूल परिवर्तन हुआ है। तो जैसे यह होली शैडो अपना सारा जीवन लगा दिया केवल और केवल सेवा में, और उसका रिंचक मात्र भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। ऐसे ही किसी स्थान पर एक विदेशी आता है और देखता है कि कुछ कामगार वर्ग वहां पर सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले श्रमिक के पास जाकर वो विदेशी पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो श्रमिक कहता है, बहुत ही उदास है और दुखी है, हतोत्साहित है, कहता है, देख नहीं रहे हो, गुस्सा आता है उसे कि मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, कठोर कठिन पत्थर, ये कार्य मैं कर रहा हूं, इतना पसीना आ रहा है, इतनी धूप है, इसमें मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। वो विदेशी दूसरे श्रमिक के पास जाते हैं जो उसी इमारत जो भी काम चल रहा है वहां निर्माण का, और दूसरे श्रमिक से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो भी थोड़ा उदास है, ज्यादा नहीं, गुस्से में तो नहीं है जैसे पहला था। तो वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आजीविका कमा रहा हूं, मुझे अपने बीवी बच्चे सबका पालन पोषण करना है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते, यदि मैं पैसे नहीं कमाऊं तो वो लोग तो भूखों मरेंगे, इसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, और इतनी तेज धूप, इतना कमाई करता, इतना मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़े से पैसे मिलते हैं। वो विदेशी एक तीसरे श्रमिक के पास जाता है। अब ये तीसरा श्रमिक जो है वो खुशियों से नाच रहा है, झूम रहा है, और उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है। वो उससे पूछता है कि मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्या देख नहीं रहे हो, मैं भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, काम एक ही है, परंतु अंतर किसमें, पहला कह रहा है कि मैं पत्थर का तोड़ रहा हूं और क्रोध से भरा हुआ है क्योंकि इतना काम करने के बाद कुछ नहीं मिलता, दूसरा कहता है मैं कमाई कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, और तीसरा कहता है मैं भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। सभी से प्रश्न है, अंतर कहां है, काम तो एक ही है, पत्थर तो तीनों ही तोड़ रहे, फिर भी अंतर है, कौन सा, सोच का अंतर, और किसका अंतर है, कर्म एक ही है तीनों का, समाधान संतुष्टता, और क्या अंतर है, खुशी है, और क्या अंतर है, अंतर किस में है, भाव और भावना में अंतर है। स्वयं स्वयं को हमें पूछना है, हम जो कार्य करते हैं वो पत्थर तोड़ रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, केवल कमाई, अलौकिक कमाई नहीं, जिस्मानी कमाई, लौकिक कमाई, या फिर भगवान के यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, तो सभी समझते हैं कि यहां जो भी कार्य होता है वो किसका कार्य है। क्या ये भगवान के यज्ञ का कार्य है या पत्थर तोड़ना है? यदि सभी को सेवा दी जाए तो सभी पत्थर तोड़ेंगे कि दुखी हो के सोचेंगे ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, प्रदर्शनी में भी जाना पड़ता है, कोर्स भी करना पड़ता है, कभी कभी भोजन बनाने में मदद भी करनी पड़ती है, तो कभी इस यज्ञ का कार्य भी करना पड़ता है। कितना काम करे, उधर भी करे, इधर भी करे, घर में भी करना पड़ता है, यहां भी करना पड़ता है। कोई अंतर है दोनों में कि एक ही है? दोनों एक ही है दोनों? क्या अंतर है दोनों में? घर में रोटी पकाना और इधर रोटी पकाना, इसमें क्या अंतर है? ये सेवा है। किसका यज्ञ है? ये स्वयं भगवान का रचा हुआ ये यज्ञ है। इसे साधारण नहीं समझना। यहां जो भी कार्य हो रहे हैं किसकी आज्ञा से हो रहे हैं? स्वयं भगवान की आज्ञा से ये कार्य हो रहे हैं। यहां का एक एक कार्य अलौकिक कार्य है, निस्वार्थ कार्य है। यहां किसी का स्वार्थ इसमें समाया हुआ नहीं है। इसके लिए क्या करना है? जीवन में मंदिर बनाना है। सुबह से लेकर रात तक हमारी जो भी सेवाएं हैं, चेक करो हम क्या कर रहे हैं। मजबूरी से कर रहे हैं, करना पड़ता है इसके लिए कर रहे हैं, मर मर के कर रहे हैं, दुखी हो के कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? खुशी खुशी से कहने के लिए कि सही में कर रहे हो? थियोरी की प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है। इस यज्ञ में असंख्य आत्माओं ने अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसा यज्ञ 5000 साल में केवल एक बार रचा जाता है, केवल एक बार, और भाग्य बनाने का अवसर भी केवल और केवल एक बार है। तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए? अभी अगर हमने उसकी मदद की तो वो क्या करेगा? फिर जन जन हमारी मदद करेगा। अभी जिसने उसके यज्ञ में सहयोग दिया उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रहेगी। द्वापर से लेकर तो अब तक ऐसे ही घर में जन्म लेंगे जहां संपूर्ण संपन्नता है। इसके लिए बाबा ने एक तो कहा है स्वसेवा, एक तो कहा है विश्व सेवा, और तीसरा कहा है यज्ञ सेवा। तीन प्रकार की ये सेवाएं कही है किसी मुरली में, स्वसेवा, विश्व सेवा और यज्ञ सेवा। हमें अपने जीवन को सफल करना है, हर श्वास को सफल करना है। हमारे इस विश्वविद्यालय में चार प्रमुख विषय हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ज्ञान, फिर है योग, फिर है धारणा, और फिर है सेवा। आज हम पहले चर्चा थोड़ी योग की करेंगे। योग की जब चर्चा होती है उसके भी पहले इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जो रेगुलर अमृत वेला करते हैं? रेगुलर, एक दिन भी मिस नहीं। अभी बाबा आ रहे हैं, कब आ रहे हैं पता है ना? 16 तारीख को, बराबर 21 दिन है आज का मिलाकर। भगवान के सामने हम होंगे, वो पूछेगा होमवर्क किस किसने किया, आंखें नीचे झुकानी न पड़े, ऐसा आज से ही पुरुषार्थ चालू कर दो। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान का है। पिछले सीजन में चली हुई जो भी मुरलियां है, कितनी मुरलियां चली, 8, इस भट्टी से जाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है, उन 8 मुरलियों को सबसे पहले तो ढूंढो कहां रखी है, कि याद है सबको कहां रखी है, तकिया के नीचे, अलमारी में, जहां कहीं वो होगी, सबसे पहले उसको बाहर निकालो, अगर नहीं है तो किसी से ले लो कल। और वो जो 8 मुरलियां चली है उनका क्या करना है, रिवीजन करना है, इससे पहले कि बाबा आए। और यदि बाबा आए और उसने कहा, अभी उसका धर्मराज का रूप भी वो लेगा धीरे धीरे। आज कहा ना, बाप भोलानाथ है परंतु ऑलमाइटी ऑथोरिटी भी है। तो अगर वो कहे कि जिसने होमवर्क नहीं किया वो इस क्लास से आउट, फिर क्या करोगे, हमारे बाजू वाला बैठा रहेगा, उसने किया और हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो उसने पिछले सीजन में जो कुछ कहा है, जो कुछ होमवर्क दिया है, सबसे पहले तो ढूंढो क्या दिया था, अभी तो भूल गए ना, बहुत दिन हो गए, कि याद है किसको, बहुत कुछ कहा था उसने। तो इस योग का भी फाउंडेशन ज्ञान है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आज से पहले तो वो मुरलियों को कल से रिवाइज करना चालू है, हो सके तो आज ही से, क्या क्या कहा था बाबा ने, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, हम बात कर रहे थे अमृत वेले की। इस योगी जीवन का फाउंडेशन क्या है, अमृत वेला। अगर अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली, यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं है, यदि अमृत वेला ही हम सो रहे हैं, यदि अमृत वेला ही आंख नहीं खुल रही है, आलस्य है, उठते ही दुख के संकल्प है, उदासी के संकल्प है, तो ना तो सेवा कर सकेंगे, ना तो स्थिति ठीक रहेगी, नाजुक बनेंगे। कल की मुरली थी ना, लाडले बन जाते हैं अलबेलेपन के और नाजुक बन जाते हैं। इसके लिए ये दूसरा काम करना है कल से, कौन सा, अमृत वेला। जो नहीं उठते और जो थोड़ा लेट उठते, या फिर जो उठते तो है परंतु नींद में चला जाता है अमृत वेला, उनको एक नई आदत डालनी है 21 दिन में। 21 दिन का बहुत गायन है, अगर 21 दिन ये आदत डाल दो तो हमेशा के लिए वो आदत पक्की हो जाएगी। और आदत स्वतः ही काम करती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, एक बार आदत हो गई तो स्वतः ही होगा। तो ये काम करना है, पहला मुरलियों का रिवीजन, दूसरा अमृत वेला, जो नहीं उठते हैं वो उठे, और जो उठते हैं परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है वो उसे शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करे, ये दूसरा काम करना है। तीसरा और एक काम करना है इन 21 दिनों में, और वो है रोज की जो मुरली है वो। यहां आना, मुरली सुनना, पॉइंट्स लिखना और चले जाना, इतना पर्याप्त नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। वो कुछ और है मुरली का मनन, मुरली पर चिंतन, मुरली का अध्ययन। केवल सुन लिया और लिख लिया इतना काफी नहीं है, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, खुद अभ्यास करना पड़ेगा, खुद अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसमें जो राज है, उसमें जो गुह्य बातें हैं, वो हमें समझ में आएगी। ठीक है, 3 कार्य समझ में आए, सबसे पहला अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन पिछले सीजन की, दूसरा काम शक्तिशाली अमृत वेला। अगर बाबा कह दे कि जो अमृत वेला नहीं करते उनसे बाबा नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा ना। तो आज भी समय है संभलने का, आज से 16 तारीख को इसी समय हम सभी भगवान के सामने होंगे। चाहे अब तक जो हुआ उसको सब भूल जाओ और आज से चालू करना, आज से नया आरंभ। यदि आज से हमने नहीं किया, एक समय आएगा। बाबा ने कभी कहा है सबसे ज्यादा पश्चाताप किसको करना पड़ेगा, संसार की आत्माओं को कि भगवान मिले नहीं, भगवान को देखा नहीं, परिचय नहीं प्राप्त हुआ, हमको उल्हाने देंगे, पर पश्चाताप सबसे ज्यादा किसको करना पड़ेगा। ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिन्होंने भगवान को पाया, भगवान की श्रीमत को समझा, भगवान से मिले, उसके बाद भी वो नहीं किया जो उसने कहा। बाबा कहेंगे तुम्हारा प्यार ही झूठा है, तो केवल कहना कि भगवान से हमारा बहुत प्यार है, वो जो कह रहा है वो हम नहीं करना चाहते, तो क्या इसे प्यार कहेंगे? क्या ये धोखा नहीं है? किसके साथ धोखा? भगवान के साथ और अपने साथ। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। भगवान का बने, भगवान को पाया, भगवान को समझा और उसके यज्ञ की सेवा ही नहीं की, वो जिस कार्य के लिए आया उसमें सहयोगी नहीं बने तो वो खुश होगा? उसने जो योग सिखाया वो किया ही नहीं तो क्या वो खुश होगा? उसने जो ज्ञान सिखाया वो समझा ही नहीं तो क्या वो खुश होगा? उसने जो धारणाओं की बात बताई वो हमारे जीवन में उतर के आई ही नहीं, केवल सुन के रखा है, शब्द मात्र है परंतु वो धारणा नहीं बनी है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस आत्मवंचना से बाहर निकलना है। स्वयं स्वयं को ही धोखा दे रहे हो और स्वयं स्वयं का ही हम नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं। इसके लिए अव्यक्त मुरली, अमृत वेला और साकार मुरलिया। साकार मुरलियों में भी मुख्य रूप से मुरली तो बहुत बड़ी होती है, 4 पेज की। किस पर चिंतन करें, किस पर मनन करें, कम से कम 2 चीजें उसमें से ले लेनी है, एक वरदान और एक स्लोगन। अब जो वरदान है और जो स्लोगन है उस पर मनन करना है। जैसे आज के मुरली में क्या वरदान था किसको याद है? अंदर का, ऊपर का वाक्य नहीं, विश्लेषण में किसको याद है? क्या कहा बाबा, किस धारणा की बात कही है? भोलेपन, देखो माता जी को याद है, बाबा ने कहा है भोला नहीं बनना है, क्या करना है? सरलता होनी चाहिए, तभी सामना करना, सहन करना, शक्ति रूप बनना ये होगा। अगर केवल भोले बने तो क्या होगा? माया का भोला लगेगा तो नुकसान होगा, माया नमस्कार नहीं करेगी। कितना सूक्ष्म अंतर बताया है, एक है भोलापन, एक है सरलता। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों में भी कुछ अंतर है। संसार में, शब्द कोश में तो दोनों एक ही है। ज्ञान के कितने सूक्ष्म अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ, एक एक वाक्य का अर्थ है, वाक्यार्थ, एक एक वाक्य का भावार्थ और फिर गुणार्थ। 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? एक एक शब्द का अर्थ अर्थात शब्दार्थ, एक एक वाक्य का अर्थ अर्थात वाक्यार्थ। भाव क्या है? भगवान जो कह रहा है उसका भाव क्या है? साधारण से शब्द है परंतु भाव बहुत पूज्य है। भावार्थ, भावार्थ दीपिका है ना,
विक्रमता है ना, पता है ना। और गुणार्थ, गोपनीयता क्या है उसमें, रहस्य क्या समाया हुआ है। भगवान जो भी कहता है उसमें रहस्य समाया हुआ होता है। तो वरदान और स्लोगन इस पे काम करना है। कितना दिन? 21 दिन। किस लिए काम करना है? आदत बनाने के लिए। कैसे काम करेंगे? मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हो सके तो जो लिख सकते हैं वो लिखे। जैसे टॉपिक है कि सहन, सरलता, कैसे सरल बने, क्यों सरल बने, क्या होगा सरलता से, क्या नुकसान फायदे, सब कुछ सोचना। ये है मनन, अध्ययन, स्वाध्याय। इस मनन से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। यहां आए, मुरली सुने, पॉइंट लिखी और गए घर। इससे बाबा ने इसको पुरानी चाल कहा एक मुरली में। कुछ आगे भी तो बढ़ना है कि वहीं रहना है जहां थे 10 साल पहले। समय बहुत कम है, सबसे पहली बात तो बहुत कम। भगवान का पाठ अभी समाप्त ही होने वाला है, अंतिम चरण चल रहा है। वो एक बार चला गया, फिर बहुत बड़ा परिवर्तन इस सृष्टि में होगा। आंख जगाने का बस ये थोड़ा सा ही समय है, 12 बजने को बस कुछ मिनट बाकी है, उसके बाद सब कुछ नया चालू होगा। बाबा ने कभी कहा है, जिन बच्चों ने बाप से सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं, उनको उस संबंध से दुख की अनुभूति होगी द्वापर से। यदि भगवान को अपना पति नहीं बनाया है तो क्या हो जाएगा? द्वापर से पति से थोड़ा थोड़ा दुख तो होगा, जितने पति मिलेंगे उतनों से। यदि भगवान को अपना बेटा नहीं बनाया, ऐसा पुत्र रतन कहीं मिलेगा क्या? शिव रतन यह है, सभी माताओं ने बनाया है उसको अपना बेटा, बना दिया। रात को उसको भोजन खिला के सोते हो कि बस खुद खा लेते हो, और उसको भूखा रात भर वो चिल्लाता रहता है, भूखा प्यासा, उसको कौन कौन भोजन खिला के खुद खाते हैं? वो माता है, हाथ खड़ा करो। जो माता है अपने पुत्र रतन, अपने शिव रतन बेटे को भोजन खिलाकर फिर सोती है, एक ही माता है बस। दो तीन थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे, बुलाते हैं पर रोज कि कभी कभी भूखा रखते हैं उसको रोज। बहुत अच्छा, अगर उसको अपना बेटा बनाया तो द्वापर से कभी किसी बेटे से दुख नहीं होगा। 8 संबंध है भगवान के साथ। कौन कौन से वो 8 संबंध है? बाप, टीचर, सदगुरु 3, चौथा पति, पांचवा भाई, छठवा बेटा, सातवा मित्र, और 8वां कौन सा रह गया है? माता, शिवमा। पर बाबा ने यह भी कहा है, कभी अगर एक संबंध ही उससे पूर्ण रीति से निभाओ तो उस एक संबंध में सर्व संबंध आ जाएंगे। परंतु हर दिन अलग अलग संबंधों का अनुभव करना, योग में नवीनता लाना। केवल ऐसे नहीं बोलना तुम मां भी हो, बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु और योग हो गया, चलो आगे पूरा हो गया। ये योग नहीं है। अनुभव, योग अर्थात अनुभव करना कि वो है, उसके प्यार का अनुभव, स्नेह का अनुभव, मदद का अनुभव, सहयोग का अनुभव, छत्र छाया का अनुभव। वो जैसे रक्षक है, हम जहां भी जाएंगे वो हमारे साथ है। द्वापर से कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं संसार में, कैसे सबने भगवान का अनुभव किया। उनके पास परिचय भी नहीं था फिर भी अनुभव हुआ ना, उनको अनुभव होते थे ना, कितने अत्याचार किए दुनिया ने फिर भी अनुभव। नंबर 88 कैसे शिव आम्ही जातिहीन रूप तुझे कैसे पाऊं त्यात आम्ही दीन। मंदिर में जाने नहीं दे रहे फिर भी खुश है, फिर भी संतुष्ट है, फिर भी अनुभव कर रहे हैं। क्यों? कैसा अद्भुत प्रेम था। क्या ऐसा प्रेम हमारे मन में है बाबा के लिए? यदि सारा संसार हमारे विरोध में हो जाए तो क्या हम भगवान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, पक्का। बहुत अच्छा। तो एक है ज्ञान जिसमें हमें पक्का होना है, उसके लिए सारी अव्यक्त मुरलियां और साकार मुरलियों का रोज अध्ययन करना है और हो सके तो रोज लिखना है थोड़ा सा। जो लिख सकते हैं वो कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की लिखे। मुरली वैसे के वैसे कॉपी करने की बात नहीं कह रहे, मनन करके पॉइंट्स लिखना, ठीक है, ये ज्ञान। दूसरा है योग। योग में तीन स्थितियां हैं। एक है आत्माभिमानी स्थिति, जो कि यहां है इस देह में रहते हुए आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना। दूसरी अवस्था है सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, मैं आत्मा और मेरा देह सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप। और तीसरी है परमधाम की स्थिति। इन तीनों ही स्थिति का रोज अभ्यास करना है। पहली स्थिति है आत्माभिमानी स्थिति, उसमें मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान और इस देह से अलग, यह देह अलग और मैं अलग, यह अनुभव करना। और सबसे शक्तिशाली समय जो है ये करने का वो है अमृत वेला। और दूसरा और एक समय है वो है नुमाश्याम। जो तीन बातें बताई उसमें अभी चौथी बात ऐड करो, वो है शाम का योग। जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो रहा है जो करते हैं, वैसा ही अभी शाम का योग चालू करना। कम से कम कितना दिन? 21 दिन, जब तक बाबा न आए तब तक। हो सके तो एक घंटा, 6:30 से 7:30 या फिर 7 से 7:30, चाहे यहां आए या फिर अपने अपने घरों में करें। यदि घरों में काम है तो वो काम करते करते भी बाबा को याद करते हुए और मौन में कम से कम वो आधा घंटा, ताकि वो समय भी योग में आ जाए। तो ये चौथा काम है, कौन सा? नुमाश्याम का योग। तो हम योग की बात कर रहे थे। योग में तीन चीजें हैं, आत्माभिमानी स्थिति जिसको हम कहेंगे समान, दूसरा फरिश्ता स्वरूप और तीसरा परमधाम की स्थिति, वो सबसे शक्तिशाली स्थिति है। उसी स्थिति में वास्तव में विकर्म विनाश होते हैं, बाकी स्थितियों में इतना नहीं होते, परंतु वो जो स्थिति है बीज रूप ज्वालामुखी योग, उसमें विकर्म विनाश होते हैं। तो अभी हम सभी कुछ समय के लिए अलर्ट बैठेंगे, सबसे पहले अभ्यास करेंगे आत्माभिमानी स्थिति का। जब भी योग में बैठते हैं सबसे पहले शरीर स्थिर चाहिए। सबसे पहले शरीर, यदि शरीर हिल रहा है डुल रहे हैं तो कैसे आत्मा स्थिर होगी? शरीर ही स्थिर नहीं हो पा रहा है तो आत्मा कैसे स्थिर होगी? सबसे पहला नियम क्या है? पहले तो शरीर को स्थिर करो, उसके बाद देखना, विजुअलाइज करना, मन की आंखों से देखना कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा इतने समय तक शरीर में रही है कि वो इसमें आबद्ध हो गई है, एक रूप हो गई है देह से। जैसे कि एक नारियल होता है ना, एक होता है सूखा नारियल, एक होता है गीला नारियल। अभी हम सब क्या है, गीला नारियल है, वो अंदर का जो है उसका नारियल और ऊपर का जो खोल शेल उसमें चिपका हुआ है। हमको किस स्थिति को पानी है, सूखा नारियल। आत्मा अलग, देह अलग, ये वास्तव में अनुभव हो। तो अभी एक मिनट के लिए सभी केवल और केवल आत्माभिमानी स्थिति में बैठेंगे कि मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं, और सभी हाथ जहां है वहीं रहेंगे, पांव जहां है वहीं रहेंगे, हाथ पैर बहुत बहुत नहीं हिलाएंगे, कोई भी एक ही मुद्रा। यहां तक के लिए योगियों के लिए कहा जाता है उनकी जबान भी निश्चिष्ट हो जाती है, मुंह के अंदर जबान भी ना हिले, ऐसी स्थिति। अति सूक्ष्म एक तेजोमय आत्मा, मुझ आत्मा से निकलता हुआ प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है। मेरे अंग अंग से यह दिव्य प्रकाश अब निकलकर चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा अति शांत हूं, पूर्ण पवित्र हूं, पवित्रता के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल चहुओं और फैल रहे। दूर दूर तक फैलते ये प्रकंपन विश्व की आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। ओम शांति। योग के छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, जब खाना बना रहे तब करना, जब चल रहे तब करना, जब बाजार में जा रहे हैं तब करना, हर बार करते रहना, आत्मा निश्चय करना। और एक दूसरा होमवर्क सभी को दे रहे हैं, चार तो हो गए, अमृत वेला, अव्यक्त मुरली, अमृत वेला, साकार मुरली, नुमाशाम का योग, अभी पांचवा, पांचवा है आत्मिक दृष्टि। कौन सा काम करना है? आत्मिक दृष्टि। लिस्ट बनाओ, एक संकल्प करो कि कम से कम सारे दिन भर 50 आत्माओं को आत्मा देखना है, 50। जो भी दिखे एक संकल्प किए आत्मा है। और कैसी आत्मा है? शांत स्वरूप आत्मा है। और एक बात उसमें जोड़ो कि ये जो आत्मा है ये शिव बाबा की संतान है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, चाहे वो है या नहीं है, पहले से ही ये संकल्प करो कि ये देव कुल की महान आत्मा है, चाहे वो विरोध करने वाले हैं, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो अपरिचित है, कोई भी हो, क्या संकल्प करेंगे कि ये आत्मा बाबा की संतान है, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। केवल ये संकल्प, बाबा ने कहा है जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट पहुंचाते हो उस आत्मा तक। हो सकता है कि वो भूला हुआ है, हो सकता है कि वो देव कुल की ही है परंतु अब विस्मृति में है। जैसे हमने ये संकल्प किया, वो संकल्प निकलकर उस चेतना को टच करेगा और वो स्मृतियां जागेगी। सोचो कोई माता है और जिसका पति 20 साल से विरोध करता है उसका, उसको मारता है, पीटता है, क्यों? क्योंकि इधर जाती है ओम शांति में 20 साल, ठीक है, 20 साल तक उसने विरोध किया, किताबें फेंक दी, लाइट फेंक दिया बाबा का, हर तरह से विरोध किया, सेंटर पर आकर हंगामा किया, सब कुछ किया। 20 साल के बाद वो ज्ञान में आता है, ठीक है, और फिर सहयोगी बनता है और बहुत अच्छा सेवाधारी बनता है। इसका अर्थ जब वो 20 साल विरोध कर रहा था तब भी वो देवकुल की ही महान आत्मा थी, थी या नहीं थी? इसका मतलब हर ब्राह्मणों का पाठ खुलने का टाइम अपना अपना है। वो 20 साल तक उसने विरोध किया तब भी वो महान आत्मा थी या नहीं थी? तब भी वो बाबा का बच्चा था या नहीं था? वो ब्राह्मण थी ना, सतयुग में आने वाली थी या नहीं थी? और अब एकदम सहयोगी हो गया है अचानक से, हमें पता नहीं कौन कब इस कुल की कौन सी आत्मा है। इसके लिए पहले से ही क्या संकल्प करना है? ये देव कुल की महान आत्मा है। अच्छा संकल्प है, करेंगे सभी तो आत्मा देखना। दृष्टि गई, आत्मा देखी। आत्मा के अतिरिक्त यदि देह को देखते हैं तो बाबा ने कहा है यह देह विष है, सांप है, सांप। कुमार यहां कम है थोड़े। यह देह क्या है? सांप है। वो सांप यदि काटता है तो बचाया जा सकता है, ये सांप अगर काटता है तो मुश्किल है। इस यज्ञ का फाउंडेशन ही पवित्रता है। दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने और सभी ने जो गालियां खाई केवल इसके लिए, जो अत्याचार सहन किए केवल इसके लिए, जो कुछ विरोध हुआ यज्ञ का केवल इसके लिए, यही फाउंडेशन है। अगर इसी में हम कच्चे हैं तो क्या कहेंगे? हमारी जो देह है ना तो हमारे और ना ही किसी और के भोग के लिए नहीं बनी है। इस देह का एक ही उपयोग है, वो है सेवा। हड्डी हड्डी इसी यज्ञ में स्वाहा करना, बाकी ये देह भोग विलास के लिए नहीं है। ना तो हमारे और ना ही किसी और के। पवित्रता अर्थात अनटच्ड। माया और मायावी पुरुष कुमारियों से मुलाकात में कभी बाबा ने कहा है टच ना करे। वो कहानी पता है ना, जगदीश भाई जी सुनाया करते हैं, एक कन्या है जो पानी से पानी भर रही है कुएं पर। एक युवक आता है, कहता है मुझे प्यास लगी। वो कहती है मैं पानी दूंगी पर अंग से अंग न लगे, अगर ये वादा करते हो तो लो। वो कहता है ठीक है और वो उसे पानी देती है। कुछ समय के बाद दोनों की ही शादी हो जाती है और दोनों को ही पता नहीं कि यही मेरी पत्नी है, ये पति है या पत्नी है। और जब मिलते हैं तो वो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था अब निभाओ। अंग से अंग ना लगे, अनटच्ड ब्यूटी, अनटच्ड पवित्रता। पवित्रता ही आधार स्तंभ है यहां का और पवित्रता में ही शक्ति है। जैसे ही आत्मा विकारों में जाती है और भोग विलास में जाती है, उसकी शक्ति तेजी से क्षीण हो जाती है। और ये संसार आज का विकारी संसार है। जो भी साधन बने हैं सब में विकार भरा पड़ा है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, सब में। चाहे वो कितने ही अच्छे धार्मिक सीरियल क्यों ना हो, हमारे पास सेवाओं के लिए समय नहीं है, परंतु टीवी देखने के लिए समय है और सीरियल देखने के लिए समय है। अच्छा, जिनका सीरियल देख रहे हो उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? क्या जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं वो भगवान को जानते हैं? क्या उन्हें यह ज्ञान का पता है? क्या उन्हें यह पता है यह संगम युग पुरुषोत्तम युग चालू है और वो किस लिए कर रहे हैं? वो सब वो क्या इसलिए कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो? कौन सी भावना है उनकी करने के पीछे? पैसा? तो हम जैसे जैसे महामूर्ख कोई नहीं हुआ फिर, अगर हम वो उनको देखते हैं तो। सातवां संकल्प, टीवी और उससे संबंधित जो भी सीरियल है सभी बंद। कठिन काम है कि सहज है? हो जाएगा? कठिन है थोड़ा ऐसा लग रहा है। धावा की याद में अच्छा लगता है ना, विकारी दुनिया को छोड़ दिया है, अभी छोड़ना बाकी है। क्या कलयुग के मनुष्य बहुत अच्छे लगते हैं? क्या उनका रूप और सौंदर्य अभी भी आकर्षित करता है? क्या भगवान से भी सुंदर इस संसार में और कुछ है? क्या देह इतनी सुंदर है, मल मूत्र से भरा यह देह, इसमें कौन सी सुंदरता? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म है इसको, मृत्यु है इसको, व्याधि है इसको, जरा है उसको, इतना ही यदि सुंदर लगता है तो जाकर देखो हॉस्पिटल में, कहां है वो सौंदर्य? हॉस्पिटल है यहां पर, जाकर देखना वहां पर। किसी से मिलने नहीं, केवल साक्षी होकर देखने के लिए चक्कर लगा के आओ, कैसे तड़प रहे हैं लोग। वो गरीब लोगों को देख के आओ, व्याधि जरा बुढ़ापा, दांत गिर गए, सुनाई नहीं देता, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कोई मदद करने वाला नहीं, कहां है सब कुछ? मिथ्या है ये देह और उसका सौंदर्य और उसके भोग और उसका विलास। इस देह को यज्ञ में स्वाहा करना, बस यही उसकी उपयोगिता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सेवा केंद्र है या बाबा का कोई भी सेवा केंद्र हो, बाबा की कोई भी यज्ञ भूमि हो और वहां रहने वाली जो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को यज्ञ में स्वाहा किया है, उनके प्रति हमारी कौन सी भावनाएं हैं? क्या हमें यह निरंतर स्मरण है कि मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो यही बहने हैं, निरंतर स्मरण है? या उनके प्रति भी हमारे मन में कभी द्वेष, ईर्ष्या, निगेटिव, इन्हें साधारण आत्माएं नहीं समझना? स्वयं भगवान ने जिन्हें चुना है वो क्या साधारण हो सकती है? यज्ञ की वेदी पर अपना यौवन और अपना जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसी अर्पिताएं, ऐसी समर्पिताएं और ऐसी निवेदिताएं साधारण हो सकती है? संसार की स्त्रियां देखो क्या कर रही है, एक नजर दौड़ाओ संसार की स्त्रियों की तरफ, किस गर्त में और किस नरक में पड़ी है। और इस आयु में अगर भगवान के प्रति समर्पण भाव जाग गया हो तो वो केवल जन जन की ऐसी तपस्वी आत्मा ही हो सकती है, उसके सिवा यह संकल्प आ ही नहीं सकता। जन जन तपस्या किया है, की है, उसके बाद संगम युग पर भगवान जब मिला तो यह संकल्प किया, चाहती थी तो नौकरी भी कर सकते थे, पैसा भी कमा सकते थे, परंतु क्या चुना? कितना अंदर स्नेह होगा यज्ञ के प्रति। और हमारा जीवन हम देखे और उनका जीवन देखे तो कितना अंतर है। इसके लिए कभी ये नहीं सोचना कि इनको थोड़ी कम समझ है, ये थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, इनके पास मैच्योरिटी थोड़ी कम है, प्रौढ़ता थोड़ी कम है, इन्हें ज्यादा समझ में नहीं आता। ऐसे संकल्प कभी मत करना। भगवान ने उन्हें यहां रखा है, उसके यज्ञ में यहां रखा है। जो वो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए? इसके लिए उनके प्रति, इस यज्ञ के प्रति, इस स्थान के प्रति, इस यज्ञ सेवा के प्रति, मधुबन के प्रति, मधुबन निवासियों के प्रति अपनी भावनाओं को कभी भी कम होने नहीं देना। जैसा उन्होंने अपना जीवन सफल किया है हमें भी करना है, कुछ तो करें। अगर उस हद तक हम नहीं कर सकते तो हो सकता है हमें देरी से ज्ञान मिला। हमें याद है एक युगल माउंट अबू घूमने आए थे हनीमून के लिए, और वहां आकर अभी 4-10 दिन भी नहीं हुए थे शादी को, और दोनों ने ज्ञान लिया और दोनों ही ऐसे पक्के बन गए, परंतु फिर भी एक पश्चाताप था कि ये 10 दिन पहले क्यों नहीं मिल गया ज्ञान। तो इस बंधन में बंधते ही नहीं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना, इज्जत उर्दू शब्द, आदर हिंदी शब्द, रिस्पेक्ट इंग्लिश शब्द, तीन शब्दों का प्रयोग किया है। किसके प्रति? जो बड़े हैं, जो अच्छा समझाते हैं, जो होशियार है, उनके प्रति रखना है। इसमें अपना अहंकार नहीं लाना है, कहा है ना आज की मुरली में। इसके लिए केवल आदर नहीं, ये तो वो आत्मा है जिनके प्रति श्रद्धा और पूजनीयता का भाव हो। सोचो यदि कोई भाई, कोई युवक, कोई पुरुष किसी मंदिर में जा रहा है और उसके मन में विकार की भावना उत्पन्न हो रही उस देवी के प्रति, तो उसको कैसा लगेगा? खुद को ही कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? यह आत्मग्लानी का भाव उत्पन्न होगा, और वहां के आसपास के लोगों को यह पता चल जाए कि ये इस भावना से मंदिर में प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या करेंगे उसके साथ? मार मार के निकाल देंगे ना। तो सभी भाई, सभी कुमार, सभी युवक किसी के भी प्रति अपनी दृष्टि को संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्र नहीं होने देना। हमारा तो ये भाग्य है कि हमारी पालना यहां हो रही है, और भगवान किसी ना किसी को निमित्त जरूर बनाता है पालना का। तो अभी हमें एक दूसरी योग की जो स्थिति है, जिसकी हम बात कर रहे थे फरिश्ता स्थिति की, उसका अभ्यास करना है। फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे। इसमें तीन प्रयोग करने हैं। सबसे पहले सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में जाना और वहां उन आत्माओं को इमर्ज करना जिन्होंने हमें जन जन दुख दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सताया है, जिन्होंने हमें बहुत पीड़ा दी है, जिन्होंने हमें अपशब्द बोले हैं, जिन्होंने हमारा अपमान किया है, जिन्होंने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, और उनको क्या करना है? क्षमा दान देनी है। क्योंकि उनके प्रति अभी भी हमारे मन में बदले की भावना है, वैर की भावना है, घृणा की भावना है, सूक्ष्म घृणा समाई हुई है। और अव्यक्त महावाक्य है कि जब तक तुम्हारे मन में सूक्ष्म घृणा भी होगी किसी एक आत्मा के प्रति, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो इस जीवन में भी बचपन से लेकर अब तक, या ब्राह्मण बनने से लेकर अब तक, जिन जिन आत्माओं को हमको लगता है कि इन्होंने हमें सताया है, दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, हमारे विरुद्ध में बोला है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, हमारा पैर खींचा है, बाधा बनी है, विघ्न बने हैं, दुखाया है हृदय को, सहयोग नहीं दिया, ऐसी सभी आत्माओं को क्या करना है? क्यों क्षमा करना है? अब ये बताओ, ब्रह्मात्मा आत्माओं का सदर में क्षमा करना, और क्यों क्षमा करना है? वो ना समझ है, वो अज्ञानी है, वो छोटे बच्चे हैं। कुछ दिन पहले वरदान था, अनजान है, ना समझ है और छोटे बच्चे हैं, था ना कुछ दिन पहले वरदान, याद है? एक तो वो, दूसरा क्यों क्षमा करना है उनको? हमको बहुत सता रहा है, कोई रोज सताता है, वो कहता है मुरली नहीं जाना, बिल्कुल हिसाब किताब चुप तो करना है, इसके लिए क्षमा कर दो। अच्छा, और तीसरा कारण, क्षमा क्यों करना है आत्माओं को? वो तो बहुत खराब है, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं हमारे बारे में, हम तो अच्छा है पर वो बहुत बुरा बोलते हैं, जीने नहीं देते, सताते हैं दिन रात, अपशब्द, व्यंगबान, कॉमेंट्स, टॉन्ट्स। नहीं, हमें क्षमा क्यों करना है, इसका उत्तर बताओ। वो आत्मा के रूप में देखो पर क्षमा क्यों करना है, वो उत्तर बताओ। अच्छा, उनको क्षमा करो तो हमें भी शांति मिल जाएगी, ठीक है। और वो बाबा की संतान है तो क्षमा क्यों करना है? तो कुछ भी करेंगे हम, क्या सहन ही करते रहे? क्यों सहन, क्यों क्षमा करना है उनको? योग के समय, योग के, अच्छा योग के समय बाधा बनते हैं, अच्छा और क्षमा कर दी तो बाधा खत्म, और हिसाब किताब चुप तो करना है। नहीं, क्षमा क्यों करना है? हम देवता बन रहे तो क्या भगवान बाबा कहते हैं? अच्छा, ये तो बड़ा पावरफुल उत्तर है, क्योंकि भगवान कहते हैं करो तो करो, चलो ये भी है क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है। कल तो चलो दूसरी बात थी, कवच के बारे में कहा था बाबा ने, सहनशीलता का कवच पहन के रखो, वो दूसरी पॉइंट थी। हमें आत्माओं को क्षमा करना है, आपने जो भी उत्तर बताए सभी राइट है, परंतु एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, इस संसार की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, वह हमारी ही वंशावली है, क्योंकि ड्रामा के राज को हम जानते हैं वो नहीं। एक काम ये करना है, कौन सा काम? क्षमा कर देना। अभी इस संसार में ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिनको हमने सताया है, रुलाया है, सहयोग नहीं दिया, वो बीमार थे पर जानबूझकर सहयोग नहीं दिया, अपशब्द बोले हैं, कटु वचन बोले हैं, दुर्व्यवहार किया है, टॉन्ट्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, चाहे ज्ञान में या अज्ञान में, चाहे इस जन्म में या द्वापर से लेकर अब तक के सारे जन्म में। कोई ऐसे भी थे कि जो भगवान के बच्चे बने और हमने पहले उनका विरोध किया, बाद में हम ज्ञान में आए, पर विरोध तो तब किया था ना, वो अब तक भूला नहीं है, पर वो व्यक्ति अभी तक भूला नहीं है। कहीं ना कहीं हमने उसे ऐसे शब्द बोले थे, बहुत जबरदस्त कठोर, उसका हृदय विदीर्ण कर दिया था। ऐसी संसार में आत्माएं जिनके विरुद्ध में हमने षड्यंत्र किए, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई की, उनको गिराने का प्रयत्न किया, अब इनसे क्या करना है। पहला तो क्षमा दे दी, अभी क्या करना है, बाबा से, बाबा को क्यों ला रहे हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर रही वो तसफल चाखा, कर्म प्रधान संसार बनाया रखा है राम ने तो, जो जैसा कर रही वो तसफल चाखा। भगवान इसमें इंटरफियर नहीं करता है, कर्म फिलॉसॉफी में। किसे क्षमा मांगनी है, हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी। क्या कहना पड़ेगा उनको कि हे आत्माओं हमें क्षमा कर दो, तीसरा और एक कार्य करना है सूक्ष्मतन में। वो कार्य है जिस जिसने हमारी मदद की, जिस जिसने हमें सहयोग दिया, जिस जिसने हमारा कोर्स कराया और जो जो हमें भगवान के पास लेकर गए मिलने के लिए और हमारी भगवान से मुलाकात कराई, जिस जिसने हम भूखे थे और उन्होंने हमारी भूख मिटाई, हम प्यासे थे और उन्होंने प्यास मिटाई, हम बीमार थे कोई देखने नहीं आ रहा था वो देखने आए, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही नीची थी और उन्होंने उस समय हमारे सहयोग दिया, हमारे लौकिक मां बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया इस संसार में, इन आत्माओं का क्या करना है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तीन कार्य करने हैं, चलो सभी योग में। त्रिकुटी मध्य में विराजमान, मैं देह से अलग, एक चैतन्य ज्योति हूं, पांच तत्वों से बना ये शरीर, पांच तत्वों में विलीन हो गया है, बच गई केवल मैं आत्मा। सूक्ष्म शरीर से पहुंच गई हूं अव्यक्त बाप दादा के सामने, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा के नैनों से पवित्रता की दिव्य किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही है। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है, बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं, बच्चे पूर्वज आत्मा हो, तुम रहम दिल आत्मा हो, तुम विजयी रत्न हो, अब देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने वो सभी आत्माएं आ रही है, जिन्हें मैंने बहुत दुख पहुंचाया, बहुत दर्द दिया, कटु वचन बोले, अपने व्यवहार से जिन्हें बहुत सताया, वो सभी आत्माएं क्रोध में हैं, बदले की भावना से त्रस्त हैं, हे महान आत्माओं मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हे देव कुल की महान आत्मा मुझे क्षमा करो, देखते ही देखते उनका वैर उनका क्रोध शांत हो गया है, सभी आत्माएं खुश हो गई और अब अपनी दुआएं मुझ पर बरसा रही है, मेरा मन हल्का हो गया, दूसरी ओर देख रही हूं असंख्य आत्माएं खड़ी हैं, ये सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, रुलाया है, पीड़ा पहुंचाई है, शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाया है, दुर्व्यवहार किया है, मैं देख रही हूं कि वो सभी आत्माएं मुझसे क्षमा मांग रही हैं, परंतु उनको देखकर मेरे मन में पहले तो हलचल, परंतु अब दया और करुणा से ये चित्त भर गया है, इन सभी आत्माओं को मैं क्षमा करता हूं, ना केवल क्षमा परंतु ये सभी आत्माएं मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और परमात्मा स्नेह की अनंत किरणें मुझसे निकल कर इन आत्माओं पर पड़ रही, सभी आत्माएं बहुत खुश हो रही है, फिर से मुझ पर दुआएं बरसा रही, देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने असंख्य आत्माओं का ये तीसरा संगठन, ये सभी वह आत्माएं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया, ये सभी वह आत्माएं हैं जिन्होंने मेरा दर्द कम किया, मुझे पीड़ा से मुक्त किया, देख रहा हूं ये सब आत्माओं को, ये वही आत्माएं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे भगवान से मिलाया, ये सभी वह आत्माएं जो रोज मेरी ज्ञान और योग के द्वारा पालना कर रही है, कैसे मैं शुक्रिया करूं इन सबका, मेरे दिल से हार्दिक धन्यवाद निकल रहा है। एक संपूर्ण हल्केपन की अवस्था में, एक निर्बोध और निर्भार अवस्था में मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए पुनः इस धरती लोक की ओर आ रहा, धीरे धीरे इस देह में मैंने प्रवेश किया है। ओम शांति। एक 5 मिनट का अभी ब्रेक लेंगे, सभी के पैर दर्द हो रहे होंगे, और यदि सबको जाना नहीं है तो आधा घंटा और ले, या जाना है सबको, जैसे आप कहेंगे। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद